पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, खुदा ताला भी उसकी मदद करता रहेगा। दूसरों की मदद करें ताकि अल्लाह ताला भी आपकी मदद करे। दूसरों की मदद में कोई कोताही ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक अता फरमाता है कि वो दूसरों की मदद कर सके। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सलाम अर्ज़ करती हूँ अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। सुबह खैर, और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह हमारी ये दुआ है कि आप एक खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ भरपूर एनर्जी के साथ कर चुके होंगे। चलते हैं स्टूडियो के इस तरफ और मेरे साथ हैं खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम।
आपकी खिदमत भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम सलाम। अपने नाज़रीन की खिदमत भी, प्यारे प्यारे नाज़रीन की खिदमत भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से फर्स्ट क्लास और तेहरान स्टूडियो में आप लोग पहुंच चुके हैं एक बार फिर दोबारा, और उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे एक खूबसूरत सा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करें। हमारे साथ आज स्टूडियो में होंगी डॉक्टर सुलेल फातिमा, सही, और उसके अलावा जो है फोन लाइन पे हमारे साथ सैयदा इरम नकवी साहिबा भी जी बिल्कुल होंगी। तो ये जो है
और हमारे हफ्ते का मौजू चल रहा है
जी, वो जो है बड़ा अहम मौजू चल रहा है जिसका हमने कल भी बात की है, और वो मौजू चल रहा है हमारा के क्या चल रहा है मौजूद
शादी में जो उम्र का इजाफा हो गया।
बिल्कुल
जी बिल्कुल। अब अहम मौजू है जो आजकल जो बोल सकते हैं कि हमारे जो नौजवान नस्ल है शादी करने से कतराते हैं। बिल्कुल ना कतराएं, कहते हैं कि वो लड्डू है जो खाए वही पछताए, जो ना खाए
वही पछताए।
जी तो खा के ही पछताने बेहतर है।
यह अब आप उन्हें कह रही है कि ना करें शादी या करें शादी,
खा के ही पछताने, एटलीस्ट टेस्ट तो चखने मीठा है या कड़वा है। बिल्कुल,
थोड़ा चलो एक तजुर्बा हासिल हो जाता है इंसान को। लेकिन ये जो रुबाब की बातें ना सुने आप जो है, ये बहरहाल जो एक चीज बहुत जरूरी है आपको बताते चलूं, वो जो रुबाब ने उस प्रोग्राम के शुरू में बात बताई वो ये थी कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला तौफीक देता है कि वो दूसरों की मदद कर पाएं, जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है।
तो मैं भी मदद कर रही हूँ ना नाज़रीन की, कि शादी कर लें जो नहीं कर रहे, तो मैं भी ये सलाह मेरी मदद है।
लड्डू वाली बात की है, उससे बड़ी जो है मदद मिली हमारे जवानों को। वैसे ही लोग जवान भाग रहे हैं आजकल शादी से, तो फिर तो ये बार ये लड्डू खाना अच्छी चीज होती है जी। आप लड्डू खाएं, शादी के लड्डू खाएं, लेकिन रुबाब की बातें ज्यादा ना सुने। लेकिन ये है कि जी कहाँ पर लेके जा रही हैं आप?
हमेशा तरह सुबह का वक्त और अजीज नाज़रीन को एक सबक आमोज दास्तान दिखाने का वक्त है, ताकि सुबह सुबह छोटा सा सबक अपनी जिंदगी के दम सीख सके। सुनते हैं दास्तान, देखते हैं दास्तान, नाज़रीन देखते हैं एक वक्फा जिसमें आप एक खूबसूरत दास्तान देखेंगे और सुनेंगे। जी नाज़रीन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। खूबसूरत सी दास्तान आपने देखी और सुनी, उम्मीद करते हैं कि इस दास्तान से हमें कुछ सबक मिला होगा। खैर नाज़रीन, हमारे गुफ्तगू के सेगमेंट का वक्त शुरू हो चुका है, और चलते हैं खुर्रम के पास ताकि अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। जी खुर्रम।
बहुत शुक्रिया रुबाब, और डॉक्टर सुलेल फातिमा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं, और मौजूद जिस पर डॉक्टर साहब ने कहा है वो आज बात करेंगी, वो है बच्चों में गुस्सा, उसकी वजूहात और कैसे उसको जो है कंट्रोल किया जाए, बड़ा अहम मौजू है। चलते हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं। सलाम अर्ज करते हैं डॉक्टर साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हैं डॉक्टर साहब?
अल्हम्दुलिल्लाह।
डॉक्टर साहब पहले तो आप ये बताएं कि आप लोगों ने जो है, आप जो है शादीशुदा हैं, डॉक्टर अवैस के साथ आपकी शादी हुई, किस पढ़ाई के किस दौरान आप लोगों ने शादी की?
मैं जब मास्टर्स स्टार्ट नहीं किया था, मतलब मैंने अपना बैचलर्स फिनिश किया था, तब मैंने फिर।
और डॉक्टर साहब, डॉक्टर वेस जो हैं वो
ओवेस तो जॉब कर रहा था।
जॉब कर रहा था, अच्छा। बहरहाल ये मैं बहरहाल ये है कि हमारा जो है हफ्ते का मौजू चल रहा है जो शादी जो डिले की जाती है उसकी वजूहात, और उसमें एक जो है वजह बड़ी अहम बोली जाती है कि जी पढ़ाई की वजह से। हम लड़कियों की तरफ से भी एक बहाना होता है, लड़कों की तरफ से भी। तो मैं ये चाहता था कि नाज़रीन को पता चले कि आप जो है पढ़ाई
और मेरी मंगनी हुई थी क्लास नाइन्थ में, जब मैं क्लास नाइन्थ में थी तब मेरी।
अच्छा, ये देखें, ये जो है एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल जो है आप लोगों को मिली है कि डॉक्टर साहब जो है बहरहाल नाइन्थ क्लास से मंगनी की और शादी भी 12 बैचलर्स के बाद जो है आपने कर ली। मुबारक हो आपको, अलबत्त अब तो काफ़ी अर्सा हो गया। तो लेकिन ये है कि ये नाज़रीन को मैं ये बताना चाह रहा था कि डरना नहीं चाहिए और जो है बहरहाल ये कदम जो है उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब चलते हैं अपने मौजू की तरफ, और आपने कहा कि बच्चों में जो गुस्सा, बहरहाल क्या है, क्या ये गुस्सा क्यों आता है, क्या वजह क्या है इसकी?
पहले तो हम ये देखेंगे कि बच्चों में हम गुस्से को किस तरीके से डिफाइन करते हैं।
ठीक है।
बच्चों में गुस्से से मुराद ऐसा जा रहा है ना रवैया है जिसकी वजह से बच्चा या तो अपने आप को या फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसमें माली नुकसान भी हो सकता है कोई कीमती चीज़ों का, या फिर किसी का जानी नुकसान भी हो सकती है, अपने पालतू जानवर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है बच्चा। और जो सबसे ज़्यादा अहम यह है बच्चों में देखा गया है वो फिज़िकल एग्रेशन, यानी जिसमें बच्चा काटता है दूसरे बच्चों को या मारता है या बाल खींचता है या अपनी चीज़ लेने के लिए हाथ उठाता है, ये सब हम बच्चे को गुस्से में उसमें करते हैं।
अच्छा, डॉक्टर साहब, आमतौर पे ये चीज़ें जो कुछ इनमें से जो आपने बताई उनको जो है देख के ये कहा जाता है कि जी बच्चा जो है वो थोड़ा सा शैतान है, थोड़ा सा जो है एक्टिव बच्चा है, ये नहीं कहा जाता कि उसके साथ कोई जो है नफसियाती मसला है या कोई बीमारी है, तो कैसे जो है वालदैन जो है उनको कैसे पता चले कि ये जो है एग्रेशन की निशानी है?
सबसे अहम बात ये कि हमें देखना है कि इस रवैये की शिद्दत क्या है।
ठीक है,
एक बात तो ये हो गई, इसके अलावा ये रवैया कब से शुरू हुआ है और ये कितना फ्रीक्वेंट हो रहा है और क्या क्या ऐसे मौके हैं जिंदगी में बच्चे के जो जिसकी वजह से ये रवैये को मिलता है कि ये अब उजागर हो जाए।
ठीक है, यानी ये इन चीज़ों को देखना है आपने, उसके बाद जो है हमको नतीजा ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये अगर वालदैन ने खुद करना है ये काम या किसी हमारे नफसियात के पास लेके जाएं तो बेहतर रहेगा?
शुरू में तो ऑब्जर्वेशन वालदैन, इसलिए कि इतना जल्दी हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है कि हम नफसियात के पास लेके जाएं, माहिरीन के पास लेके जाएं, तो अच्छा ये है कि हम घर में, और हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते घर में। जब हम मैनेजमेंट पर बात करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है,
नहीं है।
जब हम वजूहात पे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसी जिनसी जेनेटिक्स हैं जिसकी वजह से ये पेश आता है रवैया, लेकिन इन्वायरमेंटल माहौलियात की वजह से ये फिर कंट्रोल हो सकता है।
ठीक, क्या डॉक्टर साहब क्या वजूहात जो हैं, चीदा क्या वजूहात आप लोग देखते हैं बच्चों में जिसकी वजह से ये एग्रेशन या ये गुस्सा जो है आउट ऑफ कंट्रोल?
सबसे पहले तो बच्चे का खुद का मिजाज जो कि जेनेटिक्स के कंट्रोल में होता है, बच्चे की जीन्स के कंट्रोल में होता है, जो माँ बाप के दोनों के उससे आते हैं बच्चे के अंदर, सबसे पहले तो ये हो गया। माहिरीन मिजाज को तीन किस्म में तकसीम करते हैं। एक तो आसान मिजाज, वो बच्चे बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं नए माहौल में और नए लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। इसके अलावा दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इन सब चीज़ों को मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे, ऐसी बात जो कि दूसरे बच्चों के लिए बहुत मामूली हो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए वो इतना बड़ा रिएक्ट करते हैं कि हम नहीं सोच सकते।
ठीक, आना का मसला बना लेते हैं कुछ। तो बेसिक जो आप बता रही हैं कि ये जीन्स में है, ये
जीन्स में है, लेकिन हम उसको इससे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स ये है कि एक तो खानदान, फैमिली, बच्चे की फैमिली, अगर बच्चा घर में देखता है कि किसी किस्म का वायलेंस है या किसी किस्म का अब्यूज़ है, घर में गुर्बत है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारे फैक्टर्स भी बच्चे को ऐसे रवैये को इख्तियार करने पे मजबूर कर सकते हैं।
माहौल का भी असर है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जेनेटिक है, माहौल भी काउंट करता है।
जी बिल्कुल, और जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो हम देख सकते हैं कि वीडियो गेम्स जो कि दहशतगर्दी से भरपूर है आजकल, कार्टून्स, मूवीज आप देख लें, ये सब चीज़ें, और इवन रॉक म्यूजिक, ये भी देखा गया है कि रॉक म्यूजिक जब घर में बहुत ज़्यादा चलता है तो ये सब चीज़ें बच्चों पे ऐसा रवैया पैदा करने में साबित होते हैं, इसके बायस बन सकते हैं।
सही, ठीक है डॉक्टर साहब, अब गुफ्तगू हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे और जो है कुछ मुख्तलिफ सवालात मेरे जहन में वो आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह, और तो लेकिन अभी हम छोटा सा एक वक्फा लेना है तो चलेंगे हम रुबाब के पास। और नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर सुलेल फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों में जो गुस्सा होता है आउट ऑफ कंट्रोल किस्म का गुस्सा, उसके बारे में डॉक्टर साहब बात करिए, कोई सवाल आप पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुर्रम। और खुर्रम, यहाँ वक्त हुआ है नाज़रीन को प्रोग्राम के सबसे अहम हिस्से में ले जाने का, जहाँ पर नाज़रीन जान सकते हैं कि वो किस तरह हमसे रابطے में रह सकते हैं। लेते एक वक्फा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। एजाज हुसैन साहब ने हमारे को सुबह SMS किया, सलाम अर्ज़ किया, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा दबीज़ महदी साहब ने भी हमें और हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत शुक्रिया। और आसिम इकबाल साहब ने भी हमें कमेंट किया और हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद किया, और बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट से हमारे प्रोग्राम में एक जान सी भर जाती है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू के सेगमेंट की तरफ वापस चलते हैं खुर्रम के पास। जी खुर्रम,
बहुत शुक्रिया रुबाब, और सिर्फ जो है कमेंट से काम नहीं चलेगा, हमारे प्यारे प्यारे नाज़रीन अगर वो कोई बात शेयर करना चाहते हैं, देखें आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी अच्छी बात जो है बहुत से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि अच्छी बात दूसरे लोग सीखें? मेरे ख्याल में अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो ज़रूर कोशिश करता कि अपनी आवाज़ जो है दूसरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। पर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। चलते हैं डॉक्टर सुलेल फातिमा की तरफ। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे छोटी उम्र से ही शायद अभी जो है वो बोलने के काबिल ना हो, चलने के काबिल ना हो, लेकिन उन देखा जाता है कि जी कभी कोई उनके पर नज़दीक आता है तो वो बाल खींचना या जो है वो अगर उनके मुंह के पास उंगली लेके जाओ तो वो उंगली को जो है अपने दो दांतों से वो जो है काटना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एग्रेशन में शामिल होता है क्या?
उस उम्र के बच्चों के लिए तो ये नॉर्मल है, इसलिए कि बच्चे अभी बोलना सीखे नहीं है। जिस तरह हर इंसान के अंदर एक जस्तजू होती है اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے اظہارات کا خیالات کا اظہار کرے.
اچھا یہ خیالات کا اظہار ہے,
تو بچہ بول نہیں سکتا, وہ ہیلپ لیس ہے, وہ مجبور ہے کہ وہ اپنے ایکشن سے ہی کچھ کر کے بتائے کہ جس سے سامنے والے کو لگے کہ ہاں.
وہ ایکشن تھوڑے سے وہ نرم و نازک بھی تو ہو سکتے ہیں, یہ اتنے جو ہے خطرناک قسم کے ایکشن. جو مجھے یاد ہے کہ میری جو ہے ایک میری بہن کی بیٹی ہے, وہ جو ہے اس کے پاس میں انگلی لے کے جاتا تھا تو ایسی وہ دانتوں میں دبوچ لیتی تھی کہ اس کو باہر نکالنا جو ہے مشکل ہو جاتا تھا. تو یہ احساسات تھوڑے سے سخت نہیں ہوگے؟
عموماً ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بھی بچوں کو اتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فورسفلی حرکت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں.
ٹھیک, بالکل,
گدگدی کر رہے ہیں بچے, بچوں کو اتنا پیار کر رہے ہیں کہ بچہ فرسٹریٹ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں اس کے لیے شاید اس رویے کا باعث بنتا
ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ نارمل ہے یہ, پھر یہ چیز
اس عمر کے بچوں کے لیے نارمل ہے. ہاویور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے بولنے کے قابل ہوتا ہے, یہ سارے رویے ختم ہو جانے چاہیے.
اچھا اچھا, ایک چیز یہاں پر ڈاکٹر صاحب پوچھتا ہوں جو اسی سوال سے متعلق ہے, وہ یہ کہ اس طرح کی حرکات چھوٹے بچے جب اس عمر میں کرتے ہیں تو ہم لوگ بار بار چاہتے ہیں کہ وہ ان حرکات کو ریپیٹ کریں.
جی,
اور مثلا جامبوج کے جو ہے ان کو تنگ کرنا, چھیڑنا ان کو, تاکہ وہ جو ہے بہرحال وہ بال پکڑیں یا جو بھی وہ ہے, وہ ہمیں اس ٹائم پہ اچھی لگتی ہیں ان کی.
جی,
وہ عادت. تو یہ کام جب ہم کرتے ہیں تو کیا یہ ان کی عادت کو ہم پکا نہیں کر رہے؟
جی بالکل, اس لیے کہ جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کے لیے یہ ان عادت, اپنے ایموشنز اور اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
ہمیں اس وقت تو یہ اچھا لگ رہا ہے, لیکن اگر 10 سال کا بچہ یہ حرکت کرے گا تو ہمیں بالکل
اچھا نہیں لگے گا.
ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ وہ دوسری دفعہ اس حرکت کو دوہرائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ اس وقت, چھوٹا بچہ یہ حرکت کرے تو اس وقت ایسی سچویشن لائیں نہیں کہ وہ ایسی حرکت کرے, یعنی کسی طریقے سے اس سچویشن پہ قابو پایا جا سکے اور وہ اوائڈ کی جائے.
ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے بڑے ہو کے اس طرح کی حرکات نہ کریں تو بچپن سے ان کو یہ عادات پکی نہ کروائیں.
جی بالکل
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال جو ذہن میں میرے آیا وہ یہ ہے کہ بچوں سے کھلونے وغیرہ چھینے جاتے ہیں جب بچہ جو ہے کھیلنے کے قابل ہو جاتا ہے, 3 سے 4-5 سال اس طرح کی عمر جو, تو بچوں سے کھلونا یا ان کی کوئی اپنی پرسنل چیز جو چھین لی جائے یا کوئی اور بچہ آ کے لے لے, یا ماں باپ جو ہے وہ کہیں بھائی یار پڑھنے کا وقت ہے یا آپ سونے کا وقت ہے تو آپ یہ اس کو رکھ دو, تو وہ ان میں بڑا غصہ دیکھا جاتا ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان سے جو دنیا لے لی گئی ہے. تو یہ کس حد تک نارمل ہے؟
جی یہی بات ہے کہ جب بچہ بول نہیں پا رہا ہوتا تو اس چھوٹی عمر کے بچے کے لیے نارمل ہے, اس لیے کہ بچے کے لیے بات درست ہے کہ وہ کھلونا اس کے لیے دنیا سمجھتا ہے وہ.
ٹھیک ہے,
لیکن یہ بات اسی ٹریننگ کا فیز لائف میں اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. بچے کو کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا, کس طریقے سے اپنے اس جارحانہ رویے کو اپنا پیغام ضرور دوسروں تک پہنچانا ہے کہ ہمیں یہ ہماری چیز ہے, لیکن اس طریقے سے نہیں پہنچانا کہ سامنے والے کو تکلیف ہو. تو یعنی ٹریننگ کا فیز اسی فیز میں شروع ہو جاتا ہے لائف.
صحیح, ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یعنی یہ جو بچپن میں اگر کوئی بچہ ایسا بیہیویئر کر رہا ہے تو وہ اس کو ہم تقریباً نارمل سمجھیں, زیادہ مسئلہ نہیں ہے اس کو, اگر اس کو زیادہ ٹریٹ کرنے کی کوشش جو ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا کیا نقصانات جو ہیں ہمیں ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ بچے میں آ سکتے ہیں ان اس غصے کی وجہ سے, کوئی نقصانات, کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہیں؟
سب سے پہلے تو یہ کہ باڈی, ہماری باڈی, انسان کا جسم کوئی بھی قسم کے سٹریس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک سیریز آف موقع شروع کر دیتا ہے, ایک سیریز آف ایونٹس ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
جس میں ہمارا برین اور ہم دوسرے گلینڈز ڈفرینٹ کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں تاکہ وہ جو باڈی میں سٹریس ہے اس کو فائٹ کر سکے, اس کے ساتھ لڑائی کر سکے, یعنی جس کو ہم ڈیفینس بھی کہہ سکتے ہیں باڈی کا. تو باڈی اس وقت ہمارے جسم میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اور سانس لینے کا عمل بہت بھاری اور تیز ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
اس کے علاوہ توانائی کی جو کنزمپشن ہے, انرجی کنزمپشن ہے, وہ میٹابولزم جس کو کہتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں شارٹ ٹرم کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ چیز بہت عرصے تک کے لیے رہے تو ہماری باڈی کی سب انرجی اسٹور, سب توانائی کی اسٹورس ختم ہو جائیں گے.
اچھا,
اور اس کے علاوہ لانگ ٹرم میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بچے بچپن میں اگریسو تھے اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے تو ان میں دل کی بیماری جس میں ہائپر ٹینشن بہت زیادہ فیمس ہے.
اچھا,
یہ پایا گیا. اس کے علاوہ سانس لینے کی بیماری, میدے سے ریلیٹڈ بیماریاں سب پائی گئی. ایون نیند کے ایشوز دیکھے گئے ان لوگوں میں جو بچپن میں اگریسو تھے.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بچپن سے ان مشکلات کو ٹریٹ کرنا چاہیے اگر یہ مشکلات سامنے.
جی, ہمیں جس طرح میں نے پہلے یہ بات ابھی مینشن کری کہ ہم ٹریننگ کا فیز بچے کا جب وہ پیدا ہوا اس نے جو پہلی حرکت کری اسی وقت سے شروع ہو گیا, لیکن ہم زبردستی روکیں گے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں ایسے اس کو مواقع ہی نہیں پرووائڈ کرنے کہ وہ اس کو آگے لے کے چلیں.
صحیح, تو اس کا مطلب ڈاکٹر صاحبہ ایک اور جو وجہ جو انسان جب بڑا ہو جاتا ہے اس میں اگر اس طرح کی مشکلات دیکھی جاتی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ وراثتی مشکلات ہیں, وراثتی بیماریاں ہیں, تو یہ جو بچپن کی ٹریننگ ہے اس کا بھی اثر ہے اس میں؟
جی بالکل. اب تو ایک فیلڈ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے ہے جو کہ پری اسکول یعنی اسکول سے پہلے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کی جائے. اس کے علاوہ وہ فیلڈ میں ماں باپ کی بھی تربیت کی جاتی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے بچوں کی تربیت
کرنی ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ گفتگو کو ہم آگے چلائیں گے, چلتے ہیں رباب کے پاس, دیکھتے ہیں رباب ہمیں کہاں پر لے کے جانی ہے.
بہت شکریہ خورم, اور کہیں لے جانے سے پہلے میں طاہر رضا صاحب نے لاہور سے ہمیں کمنٹ کیا ہے کہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بہت شکریہ. اور پھر انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ کی جو مثال ہے شادی کی اس بارے میں بھی کہا ہے کہ بہت بہترین مثال ہے. بہت شکریہ طاہر رضا صاحب, ہمارا
وہ بھی کوئی اچھی سی مثال قائم کریں اور ہمیں جو ہے کمنٹ,
آپ کی کوئی نظرات ہو, کوئی رائے ہو اس بارے میں تو ہمیں ضرور پتا ہے, ہمیں بہت خوشی ہوگی. خیر ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے خوبصورت ترانہ دیکھنے کا اور سننے کا, رضا صاحبہ کی آواز میں ہے, امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ترانہ پسند آئے گا. جی ناظرین, آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خوبصورت ترانہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, سنا, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ ناظرین وقت کو بالکل ضائع کیے بغیر فوراً چلتے ہیں خرم کی طرف, اور خرم کے پاس ایک سوال ہے, اجاز حسین صاحب نے بھی بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے ان کا 18 سال کا بیٹا ہے, تین بہنیں, بیٹا ان کا جو ہے اکلوتا ہے. جس طرح عمر بڑھتی جا رہی ہے بیٹے کی, تھوڑا چڑچڑاپن ان کے اخلاق میں آ رہا ہے, اور زیادہ تر گھر میں ہی رہتے ہیں اور زیر تعلیم بھی ہیں فی الحال, لیکن باہر دوستوں کے ساتھ نارمل رویہ رہتا ہے. تو اگر اس بارے میں ڈاکٹر صاحبہ کچھ.
جی ڈاکٹر صاحبہ, کیا آپ اس کے بارے میں کیا؟
سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس رویے کی جو گھر میں ہے وہ شدت کیا ہے.
ٹھیک ہے,
ایسا کوئی رویہ ہے جس سے وہ اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچانے کے فیز میں ہے. عموماً ٹین ایجرز میں یہ کامن ہے, کوئی اتنے مسئلے کی بات نہیں, بس میں نے جس طرح مینشن کیا کہ شدت پہ زور دینا,
زیادہ نہ ہو شدت. ٹھیک,
اس کے علاوہ گھر میں کوئی ایسے ضرور پریشر ہوں گے جس کی وجہ سے بچہ ایسا ہے اور باہر دوستوں میں نارمل ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس موقع اس سچویشنز کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں.
یہ جو چیز سوال جو پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب, یہ بہت سے گھروں کا مسئلہ ہے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں لڑکے, وہ آہستہ سے جب وہ باہر دوستوں وغیرہ کے ساتھ زیادہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, تو گھر میں تھوڑا سا یا وہ خاموش رہنا شروع ہو جاتے ہیں, یا ان کو تھوڑی سی کوئی بات کی جائے تو ان پہ تھوڑا سا چڑچڑا پن. تو اس کا ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ لڑکوں میں زیادہ چیز دیکھی جاتی ہے, لڑکیوں میں نہیں ہے یہ چیز, ایسا کیوں ہے؟
اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لڑکوں میں ہارمون ٹیسٹوسٹیرون دیکھا جاتا ہے, جو کہ لڑکیوں میں جس کی بہت کم مقدار دیکھی جاتی ہے. اس کا ایکسپوجر ماں کے شکم سے ہی دیکھنا شروع. انفیکٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لڑکیاں جن کو زیادہ اینڈروجن ٹیسٹوسٹیرون ماں کے شکم میں ملتے ہیں, تو وہ بڑے ہو کر تھوڑا بوائش یعنی
مردانہ سٹائل بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
اس کے ان کے اندر غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلا, اور ٹیسٹوسٹیرون یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی برا ہارمون ہے, اس میلز یعنی آدمیوں میں یہ بہت ضروری ہے.
ٹھیک ہے, لیکن لڑکیوں کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک
جی, تو یہ سب سے پہلا فیکٹر تو یہی ہے. اس کے علاوہ لڑکوں کو ہمارے کلچر میں باہر کا ایکسپوجر زیادہ ملتا ہے.
ٹھیک ہے,
وہ باہر ایک تو ورکنگ زیادہ ہیں, اس کے علاوہ دوست کی کمپنی وہ لوگ باہر زیادہ پریفر کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
ان ساری وجوہات کی وجہ سے وہ گھر کے ماحول میں اپنے آپ کو صحیح نہیں
ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک پارل, یہ خود جو ہے ایک بہت لمبا چوڑا موضوع ہے کہ جو جوانی نوجوانی جب شروع ہوتی ہے تو اس میں لڑکوں کا برتاؤ یا ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کیسے ان سے بات چیت کرنی ہے, خود جو ہے ایک بہت لمبا جو ہے موضوع ہے, اس پہ انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیسے مینیج کیسے کیا جائے بچوں میں, ہم چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں جو غصہ ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے, کیا اس کے؟
سب سے پہلے تو یہ کہ اگر بچہ بولنے کے لائق نہیں, اور جس طرح ہم نے ابھی بات کی اس بارے میں کہ وہ منہ میں انگلی لے لیتا ہے, کاٹ لیتا ہے, یا ہاتھ اٹھاتا ہے یا بال کھینچتا ہے, تو اس کو ایسے موقع نہ دیے جائیں تاکہ وہ ان عادات کو پکا بنا لے. ایک بات تو یہ. اس کے علاوہ اگر آپ نے آبزرو کیا کہ آپ کا بچہ کھیل کے میدان میں, اپنے گھر میں پلے ایریا ہے, پلے گراؤنڈ میں ایسا ہو جاتا ہے, تو گھر میں تھوڑے ایسے فلیش کارڈ لگائیں کہ جس پہ بچے کی نظر پڑے تو اس کو یہ ہو کہ غصے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے لیے, یا اس کے گھر والوں کو وہ کس طریقے سے جذباتی طور پر ہرٹ کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
یہ ہو گیا. اگر بچہ ایک ایسی عمر میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود کنٹرول کرنے کے اس میں ہے, کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے, تو اس کے لیے جب اس کو غصہ آ رہا ہو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پی لے, یا اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. اس کے علاوہ گہری سانس لینا بہت زیادہ ریلیکس کرنے میں مدد دیتا ہے.
اچھا, پانی اگر پیے نا تو اس پہ چھڑک سکتے ہیں تھوڑا سا پانی, تو غصہ ہوتا رہا ہے بچے کا,
نہیں ایسا نہ ہو کہ پھر زیادہ چڑچڑا.
یہ بھی اچھا تو وہ ہے. اچھا, تو بارہ یہ کام جو ہے ہم کیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کچھ بچوں میں جو ہے بچوں کو اسکول میں تنگ کرنا या अतराफ के लोग जो है तंग करना, ये कम्युनिटी जो है उसका कितना रोल है इसको उसको ज़्यादा करने में और कम करने में गुस्से को?
बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल ये पूछा है कि कम्युनिटी बच्चे के एग्रेसिव बिहेवियर को, जारहाना रवैये को बढ़ाने में और कम करने में बहुत गहरा किरदार अदा कर सकती है। अगर बच्चा देखता है कि कम्युनिटी में बच्चों के हुकूक की कोई समझने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, चाइल्ड लेबर बढ़ता जा रहा है अगर कम्युनिटी में, और वायलेंस है कम्युनिटी में, कोई एक दूसरे के जज्बात की केयर करने वाला नहीं है, तो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। इसके लिए हमें अब तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी हैं और एनजीओज भी बनने लग गई हैं जो कि बच्चों के हुकूक पे काम करती हैं।
ठीक है, सही।
उनका मकसद यही होता है कि बच्चों में ऐसी और दीगर दूसरी साइकोलॉजिकल बीमारियों को प्रिवेंट कर सकें।
सही डॉक्टर साहब, बात करेंगे आगे भी चलाएंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे इस यहाँ वक्फा लेना, उसके बाद पूछूंगा कि माहिर नफ्सियात का क्या रोल है इसमें और माहिर नफ्सियात के पास ले जाना अच्छा है अच्छा नहीं है ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अगले हिस्से में। यहाँ पर चलेंगे हम रुबाब की तरफ और देखते हैं रुबाब जो है हमारे लिए क्या लेके आएंगे।
बहुत शुक्रिया खुर्रम, और मैं आज नाज़रीन के लिए ईरानी फर्श जो है,
अच्छा,
अक्सर हमने देखा है कि हमारे प्रोग्राम में इनकी तस्वीर दिखाई जाती हैं, लेकिन इनकी क्या खसूसियत है, कैसे बनती हैं और कितना सख्त काम है, आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। जी नाज़रीन, ये पहली तस्वीर मैं आपके लिए लेके आ जाऊँ, अगली तस्वीर खुल जाए। जी कहते हैं कि ईरानी फर्श की जो तारीख है, जो चलती हुई आ रही है, इसकी हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 2500 साल पुरानी है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ईरानी फर्श जो है वो तीन मटेरियल से बनता है, जिसमें ऊन हो गया, सिल्क हो गया और कॉटन से है, या इन तीनों को मिला के भी ये बनाया जाता है। इसके अलावा एक और बात जो कहा गया है ये कि ये फर्श बनने में तकरीबन महीने, तो कभी तो अगली तस्वीर खुले, जी मेरे ख्याल से जी तस्वीर आ जाए, जी कहा गया है कि ये फर्श बनने में कभी महीने भी लग जाते हैं, कभी साल भी लग जाते हैं, एक बेहतरीन टॉप क्वालिटी का फर्श बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इसके अलावा कहा गया है इन फर्शों के अंदर जो है वो तमाम जो रंग होते हैं इसके, वो तमाम जो है नेचुरल तौर पर या कुदरती तौर पर जो है वो पौधों से लिए जाते हैं, और ये बहुत पक्के रंग होते हैं जो आसानी से छूटते नहीं हैं। ज़्यादातर ये फर्श बनाने वाली औरतें जो काम करती हैं वो ख़वातीन होती हैं। इसके अलावा कहा गया है कि यहाँ के जो बहुत मशहूर फर्श हैं वो मशरक़ी अज़रबैजान के हैं, इस्फहान और किरमान और नाइन के हैं, और कहा गया है हर जो सूबे का है वो अपना एक अलग स्टाइल है। इसके अलावा नाज़रीन अगर ये तस्वीर खुल जाए तो मैं आपको दिखाऊं, जी ये है दुनिया का सबसे बड़ा फर्श जो ईरान ने बनाया है, जो ईरान की तरफ से बनाया गया है, और इसे गिफ्ट किया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, यानी अरबी ममालिक में एक मस्जिद है जो वहाँ पर इसको गिफ्ट किया गया है, और गिनीज में भी इसका नाम आया गया है। कहते हैं 5600 मुरबा मीटर इसका साइज़ है, और इसके अंदर तकरीबन 2 बिलियन गिट्टे जो इसके बनते हैं वो हैं। तकरीबन 2 साल लगे हैं इस फर्श को बनाने में, और इसके अलावा कहा गया है 5.8 मिलियन डॉलर इसकी कीमत रखी गई है। ये दुनिया का नायाब तरीन फर्श और सबसे महंगा तरीन फर्श है। ये तो बात होगी कुछ ईरानी फर्श की, इसके बाद कुछ मसालेदार बातें करते लेते एक वक्फा। जी नाज़रीन को दोबारा खुश आमदीद कहते हैं और कुछ मसालेदार बातें कर लेते हैं। ये तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे मैं दालचीनी के बारे में बात करने जा रही हूँ। कहते हैं दालचीनी पलाव या चावल के साथ बहुत ही मज़े का होता है, बिल्कुल सही कहते हैं। कहते हैं दालचीनी के अंदर फाइबर, आयरन, कैल्शियम और मैगनीज मौजूद है, इसके अलावा मिनरल्स का बेहतरीन जरिया है। ये तो बात हो गई कि इसके अंदर क्या मौजूद है, अब बात करते हैं कि ये क्या करता है। कहते हैं कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये कहा गया है आपके ब्लड शुगर लेवल को ये बिल्कुल मुनज़्ज़म और बिल्कुल इसका तवाज़ुन जो है वो करार रखता है। जिनकी मुंह से बदबू आती है, सांस में बदबू होती है, वो भी इसका इस्तेमाल कर उनके लिए भी ये बहुत मुफीद साबित होगा। कहते हैं क्रोनिक जो खांसियां होती हैं या नज़ला जुकाम जो होता है उसमें अगर आप चाय में इसको दम करके पिए तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतर है, ये साइनस को भी हटाता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये तमाम दिल की बीमारियों से आपको बिल्कुल बचाता है, और जिनको कहते हैं याददाश्त के मसाइल हो ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है, ये आपके जहन को खूब यानी अच्छी तरह काम करने पे मजबूर करता है। इसके अलावा कहा है कि जिनको जोड़ों का दर्द हो या फटों का दर्द हो वो भी इसका इस्तेमाल करें, उनके लिए भी बहुत मुफीद साबित होगा, और कहते हैं ये आपके खून के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके खून को बिल्कुल रवा और दवा और साफ सुथरा रखता है। ये तो बात हो गई कुछ मसालेदार बातें, चलते हैं खुर्रम के पास। जी खुर्रम
बहुत शुक्रिया, और जी नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर सुलेल फातिमा स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू हमारी चल रही है बच्चों में जो गुस्सा होता है उसके बारे में। डॉक्टर साहब, जैसे कहा जाता है कि आमतौर पे जो है छोटे बच्चों को हम लोग वैसे ही डॉक्टर के पास एक बार ले जाते हैं चेकअप करने के लिए, माहिर नफ्सियात के पास भी ले जाना चाहिए चेकअप के लिए? हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हमें ना समझ आती हों।
सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि वालिदैन और स्कूल में टीचर्स استاد یہ مل کے ایسی کنڈیشنز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ماہر نفسیات کے پاس آپ اس وقت لے کے جائیں جب آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو,
پتہ چلے گا. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ اگریشن کے لیے جارحانہ رویے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا جنرل ڈاکٹر جو ہے وہ بھی ٹریٹمنٹ دے سکتا ہے. اس لیے کہ اس میں کچھ ایسے ہارمونز ہیں جس کی کمی, جس طرح سیروٹونین اگر لیولز باڈی میں کم ہو جائیں تو بھی بچہ اگریسو ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر بھی, جنرل ڈاکٹر بھی ہمارا ٹریٹ کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ نہیں, اگر اس کو بدن کے لحاظ سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ جنرل ڈاکٹر بھی ٹریٹ کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کی عادات ہیں کچھ ایسی, تو پھر جو ہے ہمارے نفسیات کے پاس لے جانا جو ہے ضروری ہے. صحیح. کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی کیسے جو ہے یہ اپروچ کی جاتی ہے ہاسپٹلس میں, مثلا ماہر نفسیات کیسے جو ہے ڈیل کرتا ہے بچے کو؟
ڈفرینٹ تھیراپیز ہوتی ہیں, جس میں ایک تو میں نے آپ کو ریلیکسیشن تھیراپی بتائی. اس کے علاوہ ماہر نفسیات کا یہ بھی ایک کردار ہوتا ہے کہ وہ والدین کو بتائیں کہ گھر میں ان کو کس طریقے کی اسٹریٹجی فالو کرنی ہے. جس طرح بچے کے ساتھ فلیکسیبل ہونا ہے, اس کو چوائس دینی ہے, دودھ ابھی پینا ہے, دوپہر میں پینا ہے, رات میں پینا ہے, تاکہ بچہ ریجڈ نہ ہو جائے, بہت ضدی نہ بن جائے بچہ. اس کے علاوہ یہ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ بچہ 7% جو ہے 7% ماں کی, ماں باپ کے الفاظ سے میننگ لیتا ہے.
اچھا.
باقی فیصد ماں باپ کی ٹون سے اور فیشل ایکسپریشن سے میننگ لیتا ہے. تو وہ بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے.
بہت ضروری ہے.
اس کے علاوہ جب ہم کوئی, ہمارا بچہ کوئی دوسرے لوگوں یا دوسرے نئے ماحول میں جائے, تو ہم اس کو بتائیں کہ ہمارے اس سے, ہماری اس سے کیا توقعات ہیں, ہماری اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں,
بجائے اس کے کہ وہ جو کر رہا ہے پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں,
پہلے سے ہی اس کو تھوڑا اس ماحول کے لیے عادی بنانے کا شروع کر دیں. اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں جس سے وہ خود مختار ہو, یعنی پزل بنانا, سینڈ باکس اور کلے وغیرہ جو بچوں میں ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں. اور یہ بہت ایک بینیفیشل چیز دیکھی گئی ہے کہ ماں کی فزیکل کلوزنس, اگر بچہ اگریسو, اگر بچہ کوئی ایسا رویہ دکھا رہا ہے جو کہ, یا پھر ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے, ایسا ماحول ہو گیا ہے پیدا جس میں اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بچہ غصہ ہو جائے گا, تو یہ دیکھا گیا ہے ریسرچ سے کہ اگر ماں بچے کو اپنے گلے سے لگائے یا بوسا دے یا اپنے سینے سے لگائے, تو اس رویے کو حتماً کم کر سکتے ہیں.
اچھا, یعنی جو غصہ ہے اس میں بہت جو ہے کمی آ سکتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, بڑے اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور خاص طور پہ یہ کہ ماں باپ کا کتنا رول ہے بچوں کو اس غصے کے اس فیز سے باہر نکالنے میں, اور کیا انہیں کرنا چاہیے, اور کیا سمجھانا پہلے اس سے کہ آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہو بچے سے, آپ پہلے ان سے کچھ سمجھائیں, اس کو بتائیں, پھر تب آپ ایکسپیکٹیشن رکھیں. بہرحال یہ چیزیں ہیں مل جل کے جو ہے ان کے اوپر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور مل جل کے ان کو جو ہے حل کیا جا سکتا ہے. اکثر اوقات یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ماں باپ کیونکہ اکثر تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے بچوں سے, بچوں کو مثلا اگر کوئی کھانے کو کچھ چیز دی ہے تو ان میں اتنی جان نہیں ہوتی, اتنا وہ جو ہے ٹائم نہیں ہوتا صبح خاص طور ناشتے کے ٹائم پہ کہ جی وہ بیٹھے ہیں اس کے جو ہے اس کو آرام سے اس کو کھلائیں, تو وہاں پر اکثر جو ہے بچے کے ساتھ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چوائس دینی چاہیے کہ اگر بچہ اگر صبح ٹائم کے دودھ نہیں پیتا, اکثر بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے دودھ پینے میں, طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو آپ ان کو چوائس دیں کہ بھائی جب آپ اسکول سے واپس آئیں تب آپ پئیں گے, تو وہ کہے گا کہ ہاں جی پئیں گے, تو وہ اس ٹائم پہ وہ پیے گا بجائے اس کے, بغیر اس کے کہ وہ آپ سے لڑائی کرے یا آپ سے بحث کرے یا آپ اس کو کہیں کہ بھائی رات کو پیو گے. تو بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں جو ہے والدین کا بہت بڑا رول ہے, والدین کو تھوڑا سا جو ہے حوصلے کے ساتھ کام کرنا چاہیے, اور بات چیت, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹون کیا ہے آپ کی, آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہو اپنے بچے کے ساتھ, اور کیا آپ کا فیس, آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کیسی ہے, یہ بہت زیادہ جو ہے اہم چیزیں ہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ آئیں یہاں پر مختصر سے ٹائم میں, آپ نے جو ہے کافی اہم نکات کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہمارے ناظرین کے لیے, شکریہ ادا کرتا ہوں.
بہت
شکریہ. جی روبا,
بہت شکریہ خورم, ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گی. اور بات کی طرف جو ڈاکٹر صاحب اور خورم نے اشارہ کیا کہ والدین کا حوصلہ رکھنا بچے کی پرورش میں سب سے اہم نقطہ ہے, کیونکہ ہم خود, میں خود ایک ماں ہوں, اور اس بات پہ میں خورم کے ساتھ بالکل جو ہے وہ سہمت کرتی ہوں, یعنی بالکل ان کی بات کو مانتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے بچے کی پرورش کے لیے. خیر ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے, جیسے میں نے آج نائن کی بات کی اور نائن کی فرش کی بات کی, لیکن ابھی ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں نائن کے شہر کی سیر کرانے, ایک خوبصورت سا فوٹو کلپ دیکھتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
جی, آپ لوگوں نے جو ہے خوبصورت سا ویڈیو کلپ دیکھا, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. بہرحال جو ہے بڑی دلچسپ قسم کی عمارات کی جو ہے
تاریخی عمارات تھیں.
جی, یہاں پر ہمارے پاس جو ہے دبیز مہدی صاحب نے جو ہے ہمیں کمنٹ لکھا ہے, اور بہت خوبصورت کمنٹ لکھا ہے. انہوں نے کہا میں کشمیر سے میرا تعلق ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایران سے سہرٹ टीवी से, प्रेस टीवी से बहुत मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपका जो मोहब्बत भरा जो कमेंट जो मैसेज था, शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमेशा हमारी कोशिश रही है कि हम लोग जितना ज़्यादा इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश कर सकें कि ईरान की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आवाम और ख़ास तौर पर कश्मीर और कारगिल के लोग जो बहुत ख़ास करके जो है हमेशा हमें याद रखते हैं, बिल्कुल हमेशा प्रोग्राम हमारा देखते हैं और कमेंट करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका।
जी खुर्रम, यहाँ हमारा वक्त हुआ हमारे टेलीफोन लाइन से, सैयदा इरम नकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ।
सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप लोग?
अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह।
और हमेशा की तरह हम आपके शुक्र गुजार हैं कि आप इतना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला,
बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
सैयदा इरम नकवी साहिबा, हमारा मौजूद जहेज के बारे में चल रहा है। मेरा पहला सवाल अगर मैं ये बोलूँ, कहते हैं जहेज लेना और देना लानत है, तो आपके ख्याल में बात किस हद तक दुरुस्त है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस लिहाज से ये बात जो है दुरुस्त है कि क्योंकि जिंदगी का पूरा दारोमदार ही इस पे बन गया हुआ है। अब आप देखें कि आजकल के माशरे में, खास तौर पे हमारे इस्लामी माशरे में, पूरे शादी की बुनियादी जहेज की वजह से होती है, बजाय ये कि हम और दूसरी चीजों को मद्देनजर रखें कि जो कि एक कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है, हम सारा उसी पे होता है कि अच्छा से अच्छा जहेज हमें देना है।
बिल्कुल।
तो जबकि जिंदगी जहेज पे नहीं गुजरती है, या जिंदगी देखा जाए तो जो आजकल हमने बड़े बड़े मतलब बहुत ज्यादा मकदार में हक महर वगैरह जो सब तयन करने शुरू कर दिए, जिंदगी अच्छी गुजारना इन चीजों पे तो नहीं है इसकी बुनियाद। बहुत सारी और चीजें हैं जो एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी होती हैं। तो जहेज का कोई भी इस लिहाज से अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कोई इस बुनियाद नहीं है कि उसका जहेज का जितना ज्यादा होगा एक अच्छी जिंदगी का वो गारंटेड होगी।
बिल्कुल सईदा इरम नकवी साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी क्योंकि जहेज आजकल एक ऐसा चीज है कि अगर आप ना दें तो शादी नहीं होती, लड़की घर में ही रह जाती है। तो हमारे इस्लाम में अगर मैं बोलूँ तो इस तरफ हमें किस तरफ इशारा किया गया है इस बारे में?
देखिए, इस्लाम में तो हमारे सबके सामने वाजे है कि हम हर दफा जो इस चीज की तकरार करती हूँ कि हमारे जो रोल मॉडल्स है इस्लाम में मुशख्खस है, और हम देखते हैं कि सबसे पहले रसूल खुदा ने अपनी बेटी की किस तरह से जो है ना शादी की। ठीक है, उस जमाने की जो भी बहुत ही बेसिक जो जरूरियात थी वो उन्होंने अपनी बेटी को दी, जितनी भी, ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को दें जो हम दे सकते हैं आराम से, जो हमारी यानी तवानाई जो है उससे ज्यादा किसी के ऊपर बोझ डालना तो बिल्कुल सही नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और ये एक बुनियादी वजह है जो आजकल आप देखें कि शादी की जो एज है वो डिले होती जा रही है, क्योंकि हर लड़की की ये ख्वाहिश बनती चली जा रही है कि उसके पास शादी से पहले लड़के के पास हर चीज मौजूद हो, जबकि नहीं, ये चीज जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपको एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपस में ज़हनी हमाहंगी की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये चीजें तो बाद में आती हैं, पूरी जिंदगी में जो है आपकी जरूरियात पूरी होती चली जाती है।
अच्छा इरम नकवी साहब, एक बात की मुझे समझ नहीं आती, वो ये है कि जब रिश्ता किया जाता है और बहरहाल जो है लड़के वाले जो है जहेज मांगते हैं और उस पर अड़ जाते हैं, तो ऐसे खानदान के साथ रिश्ता बनाना सही भी है या नहीं सही? क्योंकि मुझे जहां समझ आती है तो मेरे ख्याल में तो ऐसे खानदान जो जहेज के ऊपर अड़ जाते हैं कि नहीं जी जहेज नहीं दिया तो शादी बस आप जो रखें अपनी बेटी को अपने पास।
आप ये देखेंगे कि आप ऐसे खानदान के साथ अगर आपने रिश्तेदारी कर भी ली ना किसी उसमें, तो लॉन्ग टर्म में आप देखें उनकी डिमांड्स बढ़ती चली जाएंगी। अभी जहेज है, कल को कुछ और चीज है, कल को, तो ये चीज तो है और हमारे सामने देखा भी हमने कि उनकी डिमांड्स कभी खत्म नहीं होती है कि एक दफा वो जहेज लेके चुप हो जाए, वो चीज नहीं होती, उसके बाद उनकी किसी ना किसी मौके पर और डिमांड्स निकलती चली आती है। तो ऐसे लोगों के साथ इंसान बजाय जो जाहिरी चीजों को देख के रिश्ता करते हैं तो वो तो कोई रिश्ता करने में उनसे खुद इंसान का जहन जो है आसूदा नहीं होगा उसमें।
अच्छा, लेकिन अभी इरम नकवी साहब, अभी जो सवाल मैंने ये पूछा, बहरहाल जो लोग मजबूर होते हैं बेटियों की शादियां करने के लिए, उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं और बहरहाल जो है वो लोग अभी यही कह रहे होंगे कि जी खुर्रम ने जो है बड़े आराम से बात कर दी, आपके ख्याल में इस ये मजबूरी है, हमारे यहाँ माशरे में मजबूरी समझी जाती है कि जी बस शादी अब करनी है, क्या करें, मजबूर हैं, माँ बाप जिस तरह भी हो सके कहीं कोई हजार चीजें जी बिल्कुल बेचते हैं और जो है ये काम कर देते हैं, तो आपके ख्याल में जो है ये काम चीजें बेच के कर्ज लेके जहेज को पूरा कर देना सही है?
ये तो बिल्कुल सही नहीं है। हम देखें ये कितना, आप खुद सोचें कि एक हम कहते हैं कि बाप की कमर टूट जाती है एक बेटी की शादी करने में, वो सिर्फ इसी वजह से कि वो इतने बड़े कर्ज और इतना सब लेने के बाद और फिर पूरी उम्र उन कर्जों को उतारने में, और फिर बाकी और बच्चे अगर उनके उनके हक हकूक है, तो इंसान मजबूर है, वाकई मजबूर है। कुछ तो ये दोनों तरफ को सोचना चाहिए, लड़के वालों को भी और लड़की वालों को भी। बुनियादी चीज है कि आपको अच्छी लड़की मिले या आपको अच्छा लड़का मिले। जो चीजें हमें इस्लाम ने बताई कि हम उसका ईमान देखें, लड़के का उसका तकवा देखें, उसमें ये चीजें जो हैं जो एक अच्छी जिंदगी में कल को आपकी बेटी को खुश रख सकते हैं। अगर लड़की में ये खसूसियात है वो आपके बेटे को खुश रख सकती है, ये चीजें हम दूसरी चीजों को जो है। और ये वाकई आप देखें सफेद पोश लोग जो है ना वो इस चीज में जो है पिसते ज्यादा है, क्योंकि ठीक है अगर किसी के पास है वो अपनी इस्तेताद के मुताबिक दे रहे हैं अपनी बेटी को, वो एक अलग चीज है, ये अपने बेटे को अगर कुछ दे रहा है, लेकिन जो सफेद पोश तबका है उसको असल मसला तो होता है ना, कि वो लोग जो है अपनी इस मुश्किल में खुद को मतलब पूरी जिंदगी के उनका ये मसाइल फिर जो है वो सही रहते हैं।
अच्छा ये रमनक साहब आपने एक बड़ी अच्छी बात की, और वो ये बात थी कि जो है हमारे दीन में भी आया है कि अगर आप ये चाहते हो कि पहचानो दूसरे लड़के को या लड़की को, आप चाहते हो कि पहचान सको, तो उसमें ये नहीं देखना कि उसका माल है, उसको ये देखना है कि उसमें तकवा है, नमाज पढ़ता है वो या नहीं। ये बड़ा अच्छा तरीका जो है हमारे दीन ने बता दिया। अच्छा इरम नकवी साहब, ये तो फिर वो जहालत के जमाने की तरह हम चले गए ना, कि बाप की बेचारे की कमर ही टूट जाती है बेटी की शादी करवाने, ये वही जमाना आ गया ना जब जिस जमाने में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, तो ये हम लोग दोबारा उसी तरफ नहीं जा रहे क्या?
उसी तरफ बिल्कुल। एक तरफ समझे कि अगर किसी लड़की की शादी जहेज की वजह से नहीं हो रही तो उसकी जिंदगी तो वही एक जैसे वो दरगोर होने के ही मुताबिक है ना, कि मतलब आप उसकी शादी नहीं हो रही सिर्फ इस वजह से कि उसका बाप उसको कुछ दे नहीं सकता या उसको ऐसा लड़का नहीं मिल रहा जो उसके साथ शादी करे सिर्फ इस वजह से कि लड़की जहेज जो है नहीं ला सकती है।
तो ये इसका मतलब नकवी साहब सोचने का अभी जो है मकाम है हम सब के लिए, लड़के वालों के लिए भी लड़की वालों के लिए भी। तो आप क्या आखिरी में एक पैगाम क्या देना चाहेंगी?
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमें सिर्फ इस बुनियाद पे जवानों की शादी में देर नहीं करनी चाहिए कि हाँ उनको एक सेटल जिंदगी यानी हर जिंदगी की जरूरत जो एक बजाहिर जिंदगी की जरूरत है उसके उसकी इंतजार में जवान की जो है लड़का और लड़की उसकी उम्र को नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि जो इस्लाम ने जो हमें मिलाद बताए कि उसमें ईमान तकवा ये चीजें जो है इनको देखना चाहिए, तो इंशाल्लाह शादियां जो है कामयाब होंगी, शादियों की उम्र जो है इस्लाम के मुताबिक जो है जल्दी जैसे शादी जैसे ही बच्चे जवान हो आप उनकी शादियों का सोचें, हम उस तरफ ज्यादा इस को लाएं ना, ये कि हम इन चीजों में कि आपकी एज या 30 साल की उम्र में लड़की की शादी नहीं हुई तो ये अच्छी बात नहीं है।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया इरम नकवी साहब, बहुत मुफीद आपसे गुफ्तगू रही
जी,
शुक्रिया, खुदा हाफिज़ जी। नाज़रीन आप लोगों ने बहरहाल इरम नकवी साहब की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आप लोगों को बहरहाल पसंद आई होगी।
हमने कल की तरफ इशारा किया कि दोनों तरफ से सोचना चाहिए इंसान को,
बिल्कुल बहरहाल ये है कि बहरहाल थोड़ा सा दुख भी होता है ऐसी बातें सुन के,
लेकिन एक हकीकत है,
हकीकत है बिल्कुल, और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उस हकीकत को जो है सामने ला सके। हो सकता है शायद ये मुश्किलात जो हैं, ये परेशानी, ये गलतियां जो है हम खुद भी करते हों, लेकिन सिर्फ इन बातों का जिक्र हम करते हैं ताकि जो है हमारी आंखें जो है खुलती जाए,
गौर और फिक्र और सोच के साथ हम इसका मसला जो है।
कल का मौजू जो है
ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जिल्द की बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे, और हमेशा की तरह मैं दुआ करती हूँ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए मुझे रुबाब मंसूरी को प्रोग्राम सुबह जिंदगी से तेहरान स्टूडियो से इजाजत दीजिए।